हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे अध्याय में दक्ष के यज्ञ में भगवान विष्णु के प्रकट्य के ऊपर सभी देवता और सदस्य प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान श्री नारायण की। आज हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना का वर्णन सुनेंगे। तो सदस्यों की प्रार्थना के उपरांत ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नएतत् स्वरूपं भवतो असौ पदार्थ भेद ग्रही पुरुषो यावद ईक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मयाद व्यक्ति रक्तो मतस्त्वम्। सदस्यों ने कहा, ब्रह्मा तक कोई आपको नहीं जानता है। तो ब्रह्मा जी अब स्वयं कहना चाह रहे हैं, न एतद् स्वरूपम भवतो, आपका जो ये स्वरूप है जो हमारे सामने खड़े हैं अष्ट भुजा धारण करके साक्षात भगवान विष्णु, असौ पदार्थ भेद ग्रही। पदार्थ भेद ग्रही का मतलब है, जब तक हम दुनिया में कोई चीजें देखते हैं तो किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, अथवा मन से सोचते हैं या बुद्धि से निर्णय करते हैं। पुरुषो जब तक व्यक्ति यावद, जब तक ईक्षते ज्ञान से, अपने ज्ञान से, ज्ञान सत्वगुण की वृत्ति है तो भौतिक है। चार्थ गुणस्य, जब तक ये गुणों का प्रभाव है और इसी का आश्रय लिया हुआ है। ये सब किसके आश्रय में? ये तो आपके आश्रय में है, तो आपको इनसे कैसे समझा जा सकता है? औजार से कारीगर को कैसे समझा जा सकता है? तो आप तो माया से परे हैं, ये ब्रह्मा जी का भाव है। तो हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना में हम पढ़ते हैं श्रीधर स्वामी जी का भाव। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभो पृथक पृथक इंद्रियां, मतलब आंख से, कान से, नाक से, जो पुरुष पदार्थों को देखता है, आंख से रूप देखता है, कान से शब्द सुनता है, नासिका से गंध सूंघता है, वो आपका स्वरूप नहीं, वो आपका स्वरूप नहीं है। आप तो ज्ञान तथा शब्द आदि विषयों तथा श्रोत आदि इंद्रियों के अधिष्ठान है। अधिष्ठान है का मतलब वो सब आपने दी हुई हैं, तो उनके द्वारा आपको कैसे जानेंगे? वो तो भौतिक है। ये सब के सब आप में अध्यस्त है, अतएव आप इस माया मय पंच पर पंच से भिन्न ही है, आप इनसे अलग हैं, इससे कैसे जाना जा सकता है? महर्षि भृगु ने जो कहा था कि ब्रह्मा आदि आपको तत्व से नहीं जानते हैं, इसे नहीं, इसको सह नहीं सका ब्रह्मा, और इसके कारण ब्रह्मा जी ने तत्व तो तत्व को आविष्कृत करते हुए कहा। ब्रह्मा जी को लगा कि ये सदस्य कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी नहीं जानता है भगवान को, मैंने तो पहले भगवान को देखा, हाथ मिलाया तब भी ये भगवान विष्णु को मैंने देखा था। तो वो कहते हैं, नए तदति, ये श्लोक जो कह रहा है, अलग अलग पदार्थों का ग्रहण करने वाले, अलग 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 पदार्थों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां, जिनको पुरुष देखता है, वो आपका स्वरूप नहीं है। आप तो गुणों तथा इंद्रियों के अथवा ज्ञान तथा ज्ञेय पदार्थों के कारणभूत हैं, इनके द्वारा देखे नहीं जाते, ये तो आपकी सत्ता से काम करते हैं, तो इनसे आपको कैसे देखा जाएगा? आप इन सबके अधिष्ठान हैं, अतएव आप इस मिथ्य माया परपंच से पृथक ही है, आप भौतिक नहीं है, ये इसका भाव है। आप श्रील प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में लिख रहे हैं ब्रह्मा जी के भाव को। मेरे प्रिय भगवान, हे नारायण प्रभु, आपका जो ये सनातन स्वरूप है, ये जो आपका व्यक्तित्व है, इसको कोई भी व्यक्ति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकता। तो हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख से देखना है, कान से सुनना है, नासिका से सूंघना है, जीभ से चखना है, त्वचा से स्पर्श करना है। तो ज्ञान इंद्रियों का आप विषय नहीं है, आपकी स्थिति सदा ही दिव्य है। किससे दिव्य है? भौतिक प्रकृति से दिव्य है। ये ज्ञान इंद्रियां तो भौतिक है, तो इन ज्ञान इंद्रियों से विश्लेषण करके, तर्क वितर्क करके आपको जानना संभव नहीं है। ये तो केवल साधन है और ये उपकरण है, इनसे कैसे आपको जानेंगे? ये तो मशीन है, इससे आपको नहीं जाना जा सकता, आप इनसे परे हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं उनका भाव कुछ और है। वो कह रहे थे आप अभी हमारे आंखों के सामने हैं, हम आपको आंखों से देख ही तो रहे हैं। जब तक ऐसे आपका अनुभव साक्षात नहीं होता है, तब तक केवल इंद्रियों का शरण लेने से, इंद्रियों के देवताओं को का आधार लेने से आपको नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब भौतिक है। चक्रवर्ती पाद कहते जब तक आपके रूप का दर्शन नहीं होता है, तब तक वो इंद्रियों के आश्रय लेकर उनके अधिक अधिष्ठान देवता का ही सहारा लेता है और वो इंद्रियां कौन सी हैं? अर्थस्य, इंद्रियों के जो विषय हैं, और गुणस्य, जो इंद्रियां हैं, मन आदि सूक्ष्म इंद्रियां हैं। जब भगवान को कोई साक्षात देखता है, तब असल में वो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के देवताओं से परे है। और असल में एक चीज और भी समझनी चाहिए कि आंख जो है ये तो मशीन है, इसके अंदर देखने वाला कुछ और है, आत्मा है। आत्मा नहीं है तो आंख थोड़ी देख सकती है, आंख तो इधर ही पड़ी होती है। तो मन के ऊपर आंख का एक निशान है, ये आंख देखती है जिसका, वो मन के ऊपर इसका एक निशान है। और वो मन तब देखता है जब वो आत्मा से जुड़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर में। केवल आंख तो मशीन है, खोपा है, ये तो इधर ही पड़ा होता है। तो उसके पीछे आत्मा की सत्ता है और आत्मा के पीछे भगवान की सत्ता है। तो इसलिए भौतिक दृष्टि से आपको समझना संभव नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भौतिक इंद्रियों से आपके वास्तविक रूप का जो आध्यात्मिक है, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भृगु जी ने जो कहा था ना, उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा है, उनसे सहा नहीं गया। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का नाम गुण रूप लीला कहा जाता है, ये सारे के सारे भौतिक इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। इसका मतलब है ये हरे कृष्ण मंत्र भी हम जपते हैं, ये भौतिक इंद्रियों से इसका अनुभव नहीं हो सकता। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये प्रभु है नाम, ये जब कृपा करता है तब इसको समझ सकते हैं, हमारी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ये कहा जाता है कि भगवान के गुण रूप नाम लीला दिव्य है, ये भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। तो फिर जो ज्ञानी लोग तर्क वितर्क करके समझने का प्रयास करते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ के, ये सारा व्यर्थ है, उन्हीं का उसका परिणाम क्या निकलता है? वो कहते ये नहीं है भगवान, ये नहीं है, ये नहीं है, नेति 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 नेति, बस ऐसे ही करते हैं। क्या है वो पता नहीं है। तो जिन जिन इंद्रियों के द्वारा भगवान को जाना जाता है और जो इंद्रियों का विषय है वो सब भौतिक है, तो वहां से उससे आध्यात्मिकता का पता कैसे लगेगा? भगवान है अप्राकृत, पाउपाज लिखते हैं, प्रकृति से परे, अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति से परे है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो नहीं मानने वाले हैं निराकारवादी, निर्विशेषवादी। उनका जो स्वामी शंकर आचार्य है वो स्वयं कहता है नारायण परो अव्यक्ताद अंडम अव्यक्त संभवम। अव्यक्त जो इंद्रियों से परे, अव्यक्त के दो अर्थ हैं। एक अव्यक्त कहा जाता है प्रधान को, जो भौतिक प्रकृति जिससे निकलती है उसको भी अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के उदर में ही होता है। उससे परे दूसरा अव्यक्त है भगवान का धाम और भगवान, जिसको इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। वो इसलिए अव्यक्त है कि वो भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो वो जो भगवान अव्यक्त है, इंद्रियों से परे है, उनको हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। तो भगवान को कैसे जाना जाए? तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना से, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को तत्व से अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। जो निर्विशेषवादी हैं, निराकारवादी हैं, और जो साकारवादी और सविशेषवादी हैं, इसका मतलब एक भगवान का लाइट के रूप में ब्रह्मा जग ब्रह्मा ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, और एक भगवान का साक्षात श्री कृष्ण राम के रूप में ध्यान करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? जो निराकार के उपासक हैं वो इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो तत्व तक नहीं पहुंच सकते। जबकि भगवान के भक्त है वो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, कैसे? भगवान के प्रेममय सेवा करके। तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो अब एक सिद्धांत समझना चाहिए, कोई अपने साधन से भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान की सेवा करके प्रसन्न करेंगे तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया जाए, कोई कितना शक्तिशाली व्यक्ति हो कहे कि अब रात को 12 बजे सूर्य उग जाए तो उगेगा क्या? किसी की ताकत से सूर्य रात को 12 बजे उग सकता है? नहीं। अपना समय होगा तो सुबह सूर्य उगेगा, अपने समय के ऊपर उगेगा। ऐसे कोई कहे कि मैं प्रयास करूंगा भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, कोई भगवान हमारा नौकर थोड़ी है, हमारा आज्ञाकारी थोड़ी है। भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके सामने प्रकट होते हैं। और भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं कोई पूछे तो? यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, जो गुरु को प्रसन्न करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो तो भगवान अपनी कृपा से, ये तो वेद का श्लोक है कि जिसको भगवान वर्णते हैं, वर्ण करते हैं मतलब चुनते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। कोई अपने प्रयास से बल से, न बले न प्रवचन, न प्रवचन से नहीं, न वेद अध्ययन है, न वेद अध्ययन से नहीं, भले न बलराम जी की कृपा से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब प्रकट होते हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद जी एक श्लोक देते, सेवान मुखे जीवादो स्वयं स्प्रदे अध। जब इंद्रियों से सेवानो मुखे, सेवा उन्मुख, भगवान की ओर उन्मुख होकर जब सेवा करते हैं तो भगवान हृदय में अपने आप स्फुट होते हैं या सामने आ जाते। जीवा दो, जीवा, जीवा मतलब जबान से नाम जपना शुरू करें, आदव का मतलब और इंद्रियों से, स्वयं स्पर्धे अध अपने आप प्रकट हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अगर भौतिकवादी लोगों के सामने प्रकट भी हो जाएं तो भी वो उसको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप भगवान दिखा सकते हो, प्रभुपाद ने कहा मैं दिखाऊंगा तुम मानोगे क्या, तुम विश्वास करोगे क्या। तो भौतिक लोगों के सामने भगवान प्रकट, तो देखो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने प्रकट थे, भगवान नहीं मानकर उसको बांधने के लिए कहा था इसको रस्सी से बांध लो। वो भगवान शिशुपाल के सामने खड़े थे तो उसकी निंदा कर रहा था। तो भगवान के भगवान सामने भी आए तो भौतिक जिसकी दृष्टि है वो देख ही नहीं, पहचान ही नहीं सकता है कि ये भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है, मूढ़ कहा गया है, ये मूढ़ है, ये बदमाश है। वो समझते हैं कि भगवान हमारे जैसा सामान्य है। अवजानंती माम मानुषम तम आश्रिता, मूढ़म मूढ़ा, ये मूर्ख है ऐसे समझते हैं। मेरी दिव्य शक्तियों का उनको कुछ पता नहीं है, मेरी कितनी अचिंत्य दिव्य शक्तियां हैं उनका उनको महत्व का पता नहीं है। इसलिए निर्विशेष निराकारवादी भगवान की अवहेलना करते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं कृष्ण राम आदि, परंतु भगवान के भक्त उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं, उनको समझ जाते हैं, भगवान को पहचान लेते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन भी कहता है कि भगवान आपको ऐसे जानना सबके लिए संभव नहीं है, मैं समझता हूं कि पुरुषम परमम दिव्यम, आप परम पुरुष है, मैं नहीं कहता हूं, देविल असीत व्यास शब्द मुनि कहते हैं, परंतु सामान्य लोग आपको जान नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना का भाव यह है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है, और केवल ज्ञान ही भगवान को समझने के लिए अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि सात्विक वृत्ति है और भगवान तीनों गुणों से परे है। तो भगवान को वही समझ सकता है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, और तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है भक्ति। तो भगवान को जानने का एक ही साधन है भक्ति। अब इंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र वाच, इंद्र क्या कह रहा है, इदम अपि अच्युत विश्व भावनम वपु आनंद करम मनोदृशम सुर द्वेट क्षपण ही उदायु आयुध उद आयुधई भुज दंडई उपन्नम अष्टभी। इंद्र तो जो भगवान के सामने भगवान दिख रहा है ना, भुज दंडई आपके जो ये भुज दंड है और इसके अंदर आपने उठा रखे है अस्त्र शस्त्र 16 अष्ट आठों भुजाओं में आप सुर विविध जो दो जो देवताओं के दुश्मन है जो असुर है क्षिपंती उनको नाश करने के लिए भगाने के लिए आप प्रकट आए हैं, इसलिए आपका ये वपु आनंद कर है। आनंद कर कहते वैसे चंद्रमा को, शीतल है आपका ये रूप बहुत सिपर मनोदृशम, ये जिसको देखने में आता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। इदम अपि अच्युत, हे अच्युत हे विश्व भावन, आप सारे विश्व के कल्याण करने के लिए आए हैं। तो इंद्र का भाव, इंद्र के भाव का वर्णन ऐसे किया गया है। इंद्र कह रहे हैं हे अच्युत प्रभु आपका ये भी रूप जो जगत के प्रकाशित करने वाला है, देव द्रोहियों का विनाश करने वाला है, अनेक प्रकार के आयुधन से युक्त आठ भुजाओं वाला है, तथा मन तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला है। प्रशंसा कर रहे हैं भगवान के अष्टभुज रूप की। ब्रह्मा जी ने ये जो कहा था कि जिन विषयों का इंद्रियों से ग्रहण होता है वो सब मिथ्या है, तो इंद्र उसका, इंद्र कह रहे हैं उसको नहीं सह सके इंद्र, इसके कारण कहते हैं आपका ये शरीर भी उपपन ही है, ये अनिर्वचनीय प्रपंच के समान अनुपमपन नहीं है। इसका मतलब आप हमारे सामने खड़े हैं तो हम आंखों से देख रहे हैं ना, आप अपने इन आठों भुजाओं में अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करके देवताओं के शत्रुओं का विनाश किया करते हैं, इस प्रकार से भुज डंडों से उपलक्ष है आपका ये रूप, तो कैसे कहोगे कि आपका रूप, इसका मतलब आपका स्वरूप है और आप भक्तों के ऊपर कृपा करके उसका दर्शन कराते हो। तो इंद्र ब्रह्मा जी की बात से सहमत नहीं है, ये सब इसलिए लिखा है कि हर एक अपनी बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्र कहते हैं, हे भगवान, आपके दिव्य आठ भुजाओं में जो अस्त्र शस्त्र आपने उठाए हैं, ये आप विश्व के कल्याण के लिए आए हैं, और ये बहुत मन और आंखों को आनंद देने वाला रूप है आपका। ऐसे सुंदर रूप में भगवान आप प्रकट होकर देवताओं के क्षत्रियों को, शत्रुओं का विनाश करते हैं जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। चक्रवर्ती व्यास कहते हैं, भगवान ये आपका जो रूप है जिसमें आठ भुजाएं हैं, जिसमें आठ अस्त्र उठाए हुए हैं, ये शस्त्र उठाए, अस्त्र को नहीं, शस्त्र, अस्त्र होते हैं हथियार, शस्त्र होते हैं मंत्र, मंत्रों से चलने वाले हथियार, उसको कहते हैं अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है, और ये गदा आदि शस्त्र हैं। तो आप ये क्यों अस्त्र उठा के आते हैं, शस्त्र क्यों उठा के आते हैं, ये असुरों का विनाश करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, और आपको देखा जा सकता है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, तो मन और आंखों को तो आनंद दे रहे हैं, तो कैसे कहोगे मन और आंखों से आप नहीं देखे जा सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा आप नहीं देखे जा सकते हो, हम तो हमारे आंखों को आनंद मिल रहा है, मन को प्रसन्नता हो रही है। तो चक्रवर्ती पाद देखते हैं, आपकी कृपा से आप इस जगत को धन्य कर देते हैं, आठ भुजाओं से असुरों का संहार करते हैं, हम अपने भौतिक इंद्रियों से आपकी कृपा के कारण आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इस ये प्रमाण है कि ये आपका स्वरूप ही आनंदमय है, और ये जब कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद, वही श्रीधर स्वामी के भाव को कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं, कैसे कहते हैं ब्रह्मा जी के इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण किए जा सकते, और इसलिए वृंदावन के भक्त कहते हैं, उनका नाम क्या है, वृंदावन वालों को क्या बोलते हैं, गोप और गोपियां। तो गोप का अर्थ क्या है, गो का एक अर्थ है गाय, और प का मतलब पालन करने वाला, दूसरा गोप का अर्थ है, गो है इंद्रियां, और प का मतलब पीना, जो अपने इंद्रियों से कृष्ण के मधुर रस का पान करते हैं, आंखों से रूप का, कान से मधुर वाणी का, बांसुरी का, जीभा से भगवान के सुंदर प्रसाद का, अधरा अमृत का, और स्पर्श का, और सुगंध भगवान से सौरभ निकलती है, तो ये तो सब इंद्रियों से भगवान को पी रहे हैं गोप और गोपियां। और ये गोप तो कहते हैं, भगवान हम आपको जानते हैं, तो ये इंद्र जी इस भाव से बोल रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य रूप से शास्त्रों में भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा गया है, परंतु विशेष इस यज्ञ में भगवान विष्णु आठ भुजाओं से पधारे हैं। तो राजा इंद्र क्या कह रहे हैं, आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को तो दर्शन होता है, परंतु ये आठ भुजाओं वाला जो आपका अब रूप है वो भी इतना ही सच्चा और वास्तव है जैसे चार भुजाओं वाला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके इस दिव्य रूप को इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो हम तो इसका उत्तर ये दे रहे हैं ब्रह्मा जी की बात का कि इंद्र कह रहा है राजा भगवान का भले रूप दिव्य है, भले वो भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, परंतु उनके कार्यों को और उनके दिव्य रूप को समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान सबसे विलक्षण है। कोई व्यक्ति आठ भुजाओं वाला नहीं होता है, कोई व्यक्ति चार भुजाओं वाला नहीं होता है, सबसे अलग तो है। उनके कार्य भी अद्भुत है, विलक्षण है, और उनकी सुंदरता भी और मधुरता भी विलक्षण है। सामान्य लोग आश्चर्यचकित, इसलिए कहते हैं भगवान जब अवतार लेता है तो दो बातों से पहचाना जाता है, एक तो उसके लिए भविष्यवाणी शास्त्र में होती है और दूसरा उसके कार्य इतने अद्भुत विलक्षण और मानव के विचार से महान होते हैं कि अद्भुत देख के कहता है ये तो सामान्य मानव नहीं कर सकता। तो दो प्रमाण से भगवान को जाना जा सकता है, शास्त्र का प्रमाण और उनके अलौकिक कार्यों का अनुपमा, जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसके ऐसा कार्य अनुपम कार्यों को देख के भगवान के अवतार का निर्णय किया जा सकता है। प्रभुपाद कहते भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए और जब सात साल के थे, वृंदावन में थे, और जब इंद्र ने बहुत भारी वर्षा की तो भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया और अपनी छोटी उंगली के ऊपर धारण कर लिया, उल्टे हाथ पे धारण कर लिया। ये भगवान का विलक्षण कार्य संसारी लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको हम इस बात के ऊपर विश्वास भी नहीं दिला सकते, उनको मानने में कौन सी परेशानी है। जो ये आकाश मंडल में इतने सारे तारा मंडल को अपनी जगह पे घुमा रहा है, उसके लिए एक पर्वत गोवर्धन उठाना कौन सा मुश्किल है, मुश्किल है क्या भगवान के लिए? ये सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, पृथ्वी को नीचे पानी पड़ा है, डूबती नहीं है, चारों ओर से पानी पड़ा है, ऊपर आता नहीं है, सबको अपनी सीमा में रख के बैठा हुआ है, ये तो भगवान की शक्ति से है, तो क्या वो एक पर्वत नहीं उठा सकता है? ये तो ऐसा है जैसे नारद जा रहे थे और एक मोची पेड़ के नीचे बैठा था, पूछा भगवान विष्णु से, पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कब होगी। आगे एक पंडित है, वेद पढ़ रहा था, उसने कहा नारद जी जा रहे हो तो मेरा भी पूछ के आना मुक्ति कब होगी। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से जाके पूछा, तो भगवान ने कहा ये जो जूते जोड़ रहा है ना मोची, ये तो इसी जन्म में मेरे पास आएगा, पंडित जो पाठ पढ़ रहे हैं इसको बहुत जन्म लगेंगे। भाई भगवान ये तो उल्टी बात है, उल्टी गंगा बह रही है, जो नीच काम कर रहा है वो आपके पास आएगा और जो वेद पढ़ रहा है वो नहीं आ पाएगा। भगवान ने कहा जब जाएंगे तुम वापस, आप नारद, तो आपको कहेंगे, पूछेंगे, तो कहेंगे भगवान विष्णु ने क्या कर रहे थे, तो आप एक बोलना कि वो एक सुई के सोराख से हाथी को गुजार रहे थे, बस इतना कहना। नारद जी आए, ब्राह्मण बैठा था पहले, कहा पधारिए देव ऋषि, भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। बोला हाँ जी। बोला मेरा क्या कहा? नहीं, क्या कर रहे थे? बोला एक हाथी को एक सुई के सोराख से गुजार रहे थे। बोला नारद झूठ बोलते हो, कहाँ गए थे? वहां गए थे, ऐसे कोई कोई कर सकता है क्या? नारद समझ गया भगवान ने कहा इसको बहुत जन्म लगेंगे, इसको विश्वास नहीं है। गया उस मोची के पास, मोची को, मोची ने प्रणाम किया, देव ऋषि आपको प्रणाम है, वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन किया, क्या कर रहे थे? बोला सुई के सोराख से हाथी को निकाल रहे थे। बोला जय हो भगवान, एक छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ समा सकते हो, तो हाथी को सोराख से निकालना कौन सी बड़ी बात है, सुई की आप कुछ भी कर सकते हो। नारद समझ गया इसको भगवान के ऊपर विश्वास है, ये भगवान के धाम जाने का अधिकारी। तो कोई कहे कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया, ये कौन सी बड़ी बात है, एक पर्वत उठाना कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे लोकों को धारण करके बैठा हुआ है। धार्यामि अहम् ओजसा, भगवत गीता में कहता है मैं मेरे ओज से बल से शक्ति से इस धरती को धारण किया है, सूर्य चंद्रमा सबको धारण किया है, सब मेरे इशारे से चल रहे, तो उसके लिए कौन सी बड़ी। परंतु भक्त इसको मान लेगा और भौतिकवादी संसारी लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे भगवान के कार्यों को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, निम्रता चाहिए, समझ के फिर भगवान को मानना ये साधन नहीं है, मान के फिर समझना है, ये है दुनिया के ज्ञान में और भगवत ज्ञान का अंतर। भगवत ज्ञान में पहले मानना है फिर जानना है, और संसार में पहले जानना है फिर मानना है, दोनों में अंतर। तद्विधि प्रणिपाते न, पहले शब्द है प्रणिपाते न, फिर है परिप्रश्ने न, बताइए पूछो बाद में, शरण पहले लो, इसका मतलब मानू पहले जानू बाद में, सबमिसिव। सबमिसिवनेस जो शब्द है प्रणिपाते ने का अर्थ है सबमिसिवनेस, पूछो पहले नहीं। अर्जुन भी पूछ रहा था लेकिन शरण लेकर पूछ रहा था, और धृतराष्ट्र भी पीछ पूछ रहा था और गीता सुन रहा था लेकिन शरणागति नहीं थी, केवल पूछ रहा था। तो परिणाम क्या, अर्जुन को तो गीता के ज्ञान से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और सफलता मिली, और धृतराष्ट्र को शरणागति के बिना पूरी गीता सुनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुख्य है प्रणिपाते न, उसके बगैर भगवान को समझना संभव नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भगवान के अद्भुत कार्य सामान्य व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं, वो भी मानने के लिए कायल हो जाता है, मानने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान के ऐसे कार्य देखने में भी आनंद देते हैं आंखों को, परंतु निराकारवादी इस बात को न समझ सकते हैं न मान सकते। वो समझते हैं भगवान हमारे जैसा है, हमसे इतना पहाड़ नहीं उठता है, भगवान से कैसे उठेगा। तो मूर्खता क्या करते हैं, भगवान को अपने जैसा मानने की मूर्खता करते हैं, भगवान जबकि हमारे जैसा नहीं है। असामान्य लोग धरती और कोई पहाड़ नहीं उठा सकता है तो भगवान कैसे उठा सकेगा। तो भागवत में जो ये लिखा है वो कहेंगे अरे ये तो भाई एक रूपक बिठाया है, एक एक ऐसे दंत कथा है, ऐसे बोल देंगे कुछ लोग। जैसे भगवत गीता के लिए कहते कुरुक्षेत्र ये शरीर है, ये पांच इंद्रियां पांच पांडव है, तो ऐसे जो बातें करते हैं वो सत्य को नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं। और इसका अर्थ ही दूसरा और कुछ निकालेंगे। गोवर्धन को धारण किया तो उसका अर्थ ही कुछ और निकालेंगे। वास्तव में भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था और वृंदवासियों का रक्षा किया था, सारे आचार्य इस बात को मानते हैं, व्यासदेव ने लिखा है, नारद जी उसकी कथा कह रहे हैं। भगवान की सारी लीलाएं और कार्य दिव्य हैं, उनको जैसे हैं वैसे मानना चाहिए। अगर ऐसे हम करेंगे तो हम अपनी स्थिति में आज अभी इसी वक्त भी भगवान को जान सकते हैं। और यहां देखिए इंद्र कह रहा है और ये बात को पुष्टि कर रहा है कि भगवान अष्टभुजाओं के साथ आप हम देवताओं की रक्षा करने के लिए और असुरों के विनाश के लिए और विश्व के कल्याण के लिए आंखों का उत्सव बन के आए हैं, मन हमारा प्रसन्न हो गया है। तो इंद्र ने देख के भगवान को आंखों से ही देखा, इंद्र भी तो देवता है तो भौतिक शरीर है उसका। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात का खंडन किया। ये बहुत आश्चर्य लगता है, इसलिए पहले कहा है हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर रहा है और एक एक श्लोक की प्रार्थना है। इसलिए कभी उदाहरण देते हैं कि पांच छह अंधे हों और एक हाथी देखे और उसके विषय में सबको बताना शुरू करें, तो पहला आए आगे से हाथी की सूंड को देखे, ओ ये तो पेड़ की डाली लग रही है। दूसरा आए पांव को पकड़ के, अरे ये तो बड़ा पिलर है, कोई खंभा है। तीसरा आके पेट पे हाथ घुमाए, अरे ये तो कोई दीवार है। चौथा कान को छू के कहता है ये तो पंखा है। पांचवा पूंछ को पकड़ के बहता है ये तो रस्सी है। पांचों जो कह रहे हैं वो अपने आप में सत्य है, झूठ नहीं है। सूंड डाली जैसी है, पांव पिलर जैसा है, कान पंखे जैसा है, पेट दीवार जैसा है, पूंछ रस्सी जैसी है, ये तो सत्य है, परंतु ये हाथी तो नहीं है। ऐसे हम सारे संसारी भगवान के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान ऐसा है कहते हैं, परंतु भगवान कैसा है वो हम नहीं जानते। और ये प्रभुपाद जी ने उत्तर देते हुए एक बार कहा था अपने शिष्यों को, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है क्या कृष्ण और बलराम में? बोले नहीं, चेतना चरितमृत में लिखा है एक सांवला है एक गोरा है। तो एक तो ये बात सन्यासी कह रहा था और एक माता जी कह रही थी नहीं, कृष्ण और बलराम में अंतर है, कृष्ण बलराम में अंतर है कि नहीं है? बोले नहीं है, चेतना चरितमृत लिखा एक गोरा है एक सांवला है, दोनों में तत्व का अंतर नहीं है। परंतु जमुना माता जी कह रही है नहीं अंतर है, क्या अंतर है? कृष्ण राधा के साथ रासलीला कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता। बहुत बड़ा विवाद हो गया। तमाल कृष्ण महाराज सुनते हुए चले गए। श्रील प्रभुपाद जी मधुद्वेश महाराज कहते हैं कृष्ण बलराम में अंतर नहीं है, एक सांवला एक गोरा। प्रभुपाद के सही है गलत नहीं है, चेतना चरित में लिखा हुआ है। बोला जमुना माता जी कहते हैं अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला रासलीला राधा के साथ कृष्ण कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता। बोला ये भी सच है। तो तमाल कृष्ण कहते हैं दोनों सच कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा तुम भी ठीक कह रहे हो, ये भी सच है। तो वो सोचने लगा इसका अर्थ यह है कि जिसको जितनी बुद्धि है उतनी बात करेगा, दोनों में दोनों सही हैं, परंतु असल में भगवान क्या है उसको समझना सबके लिए संभव नहीं है। ये 12 महाजन भगवान उतना ही जानते हैं जितना भगवान उनको जानने की शक्ति देते हैं, परंतु भगवान अनंत है, कोई उसको जान नहीं सकता। शेष ने कहा कब तक इस पृथ्वी का मैं भार उठा के बैठा रहूंगा? बोला जब भगवान के गुण गिन के पूरे करो तब आपको छुट्टी दी जाएगी, थोड़ा छुट्टी करना अवकाश लेना। अभी तक हजारों मुखों से गुणगान कर रहा है, अनंत गुणों का वर्णन कर रहा है, पूरे नहीं हो रहे, तब से कब उठा के खड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा आप भगवान को जानते हैं क्या? बोला हाँ इतना ही जानता हूं जितना मुझसे जन्माने की शक्ति देते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता है। एक प्रार्थना और पढ़ रहे हैं, पत्नियां वाचा, ये जो ऋषि है ऋत्विज है ना, उनकी पत्नियां, ऋषियों की पत्नियां प्रार्थना कर रहे हैं। पत्नी वाचा, पत्नी ऊंचो हो, यज्ञो अयम तव यज्ञायकेन सृष्टो विधवस्तः पशुपतिया पशुपतिनाद्य दक्ष गोपा गोपात तम नस्त्वम शव शयनाभशान्तमेधम् यज्ञातम् मलीन रुचा दृशा पुनि यज्ञो अयम तव यज्ञाय केन सृष्टो। ये भगवान यज्ञ की सृष्टि तो आपने की है, ब्रह्मा जी के द्वारा कराई है। ये भगवत गीता का श्लोक है। स यज्ञ सृष्टः प्रोवाच प्रजापति। भगवान ने सृष्टि की, यज्ञ की, देवताओं की, मानव की, और कहा कि ये यज्ञ करो। तो यज्ञ तो आपने भगवान शुरू कराया किया है, ब्रह्मा जी के द्वारा कराया है। उसी यज्ञ को विधस्त्व पशुपतिनाद्य, ये जो शंकर जी पशुपतिनाथ है ना, इसने दक्ष के ऊपर कोपात, दक्ष के ऊपर क्रोध के कारण इसको विध्वंस कर दिया, ये उजड़ गया। तम नस त्वम शव सयना अभ, अब कहते हैं कि ये कैसा है, सब शयनम, ये तो मरे हुए शरीर की तरह जैसे लग रहा है अभी, शां तो शांत मेधम, अभी तो वो पशु यही खड़े हैं जिसको यज्ञ में बलि देनी थी। ये यज्ञ आत्मन, हे यज्ञ के स्वामी, हे नलीन, नलीन कहते हैं नील कमल, रुचा आप बड़े सुंदर हैं, आपकी दृष्टि डालो, आपके दृष्टि से इसको पुनि, इसको पवित्र करो, अब यज्ञ को पवित्र करो। ये सीधी सी प्रार्थना कर रही हैं। पत्नियां ऊंचा, पत्नियां क्या कह रही हैं, हे प्रभु ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ की रचना आपकी आराधना के लिए की थी, किंतु दक्ष पर क्रोध करने के कारण इस समय ये यज्ञ को ध्वस्त कर दिया गया। हे यज्ञ आत्मन, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल की कांति के समान, कांति से संपन्न अपने इन नेत्रों से देखकर आप पवित्र बना दें। यह स्तुति है। ऋत्विजों की पत्नियां, जो पुरोहित थे उनकी पत्नियां हैं, वो स्तुति करती हुई कहती हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने आपकी आराधना के लिए यज्ञों की सृष्टि की, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने यज्ञ की सृष्टि कराई, लेकिन यज्ञ की आत्मा तो आप हैं प्रभु, हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल की कांति से युक्त अपने नेत्रों से देखकर पवित्र बना दे। प्रश्न है कि किस प्रकार के यज्ञ को, तो इस पर से कहती हां, प्रश्न है कि किस प्रकार के यज्ञ को, तो इस पर वे कहती हैं किस प्रकार के यज्ञ को, तो इसका इसके ऊपर वो कहती हैं, यहां पर मुर्दे सुलाए जाते हैं उस शमशान भूमि के समान उत्सव रहित होने के कारण प्रतीत होने वाले इस यज्ञ स्थल को, यहां पर मेघ शब्द मेध शब्द के द्वारा पशु हिंसा आदि उत्सवों को कहा गया है। मेध शब्द है इसमें, मेध का मतलब जिसमें पशु की बलि दी जाए, अथवा शव शब्द जल का वाचक है, उस जल में शयन करने वाले हे पद्मनाभ, ये अर्थ कर रहे हैं हमारे श्रीधर स्वामी। शव शब्द जल का वाचक है, उस जल में शयन करने वाले पद्मनाभ भगवान, ये शव श्यान शाह शयनाभ पद संबोधित भी हो सकता है, शयनाभ पद सोने वाले। इसके बाद ऋषि बोलेंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, यजमानों की पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु ब्रह्मा जी की आज्ञा से यज्ञों को आरंभ किया गया, परंतु दुर्भाग्य से शंकर जी दक्ष के ऊपर क्रोधित होकर यज्ञ का विनाश कर दिया। और उसके कारण जो पशुओं की बलि देनी थी वो मारे गए, इसलिए यज्ञ सारा विध्वंस हो गया। अब आप कृपा करके अपने कमल नैनों से इस यज्ञ को पवित्र कीजिए और फिर हम यज्ञ कर सके। यहां केन शब्द जो है वो ब्रह्मा का वाचक है, केन, जैसे केशव भगवान का नाम है तो कहते क ब्रह्मा और के एश ईश, ईश शंकर और वह उन दोनों का स्वामी। केशव वो जो ब्रह्मा और शंकर दोनों के स्वामी, दोनों के आराध्य, दोनों के पूजे और दोनों जिसकी पूजा करते हैं। तो यहां केन शब्द जो इस श्लोक में है वो ब्रह्मा जी का वाचक है। और चक्रवर्ती पाद भी शव शब्द को विश्व आप अपने श्रीधर महाराज के भाव को कहते हैं जल का वाचक है। तो शव शय नाभ, शव शय नाभ का अर्थ है भगवान की नाभि, नाभ नाभि कमल, कमल होता है जल में, तो जल कमल जल में होता है इसलिए भगवान की नाभि। इसका मतलब भगवान कैसे हैं, कमल नाभ, भगवान का एक नाम है ना कमल नाभ। अब इस यज्ञ को आप पवित्र कीजिए, शांत मेधम, आपके दृष्टि से आपके उपस्थिति के बिना हम कितना ही प्रयास करें यह सफल नहीं हो सकता है। तो ये वो जो ऋत्विज की पत्नियां हैं सबकी ओर इशारा करते हैं, ये सब कुछ भी करें कुछ नहीं पूरा हो सकता है, आप ही कृपा करके दृष्टि डालेंगे तो सब हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी मेध शब्द के ऊपर परिभाषा पहले लिख रहे हैं। मेध का अर्थ अगर पशु बलि है तो प्रभुपाद कहते यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी तो उसको नया जन्म मिलता था, उसको नया जन्म मिलता था, मानव जन्म में चला जाता था, उसको उन्नति हो जाती थी। और इसमें मंत्र जापनों वालों के मंत्र की शक्ति के प्रभाव को दर्शाया जाता था, परंतु दुर्भाग्य से यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को शंकर जी के क्रोध के कारण विध्वंस होना पड़ा और कुछ पशुओं का वध भी हुआ। एक तो दक्ष के सर लगाने के लिए बकरे को काटा गया और उनके सारे शरीर वहीं पड़े थे। कहां पड़े थे, यज्ञ के यज्ञ भूमि में पड़े थे, तो वो तो शमशान लग रहा था, तो इसलिए जो यज्ञ का असली भाव था वो तो लुप्त हो गया, यज्ञ शमशान बन गया, पशु पड़े थे। भगवान विष्णु वो तो यज्ञपति हैं, वास्तव में अंत वही तो यज्ञपति हैं। इसलिए ऋत्विजों की पत्नियां, पुरोहितों की पत्नियां प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि यज्ञ के ऊपर डालिए और ये आपकी अहितुकी कृपा ही इस यज्ञ को पूर्ण करेगी, तब ये यज्ञ पूरा होगा। इसका भाव प्रभुपाद जी ये कहते हैं, ये है इसका भाव, ये है प्रभुपाद जी कहते हैं कि पशु की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी दृष्टि मात्र से सब कुछ हो जाएगा। पशुओं की बलि तो मंत्रों के बल को दिखाने के लिए की जाती थी, उनको तो पहले ही शंकर जी के सर को लगाने के लिए बकरे की बलि हो चुकी है, अब पशु की बलि की आवश्यकता नहीं है। अब ये वातावरण ऐसा है, बस आप कृपा दृष्टि डालें और यज्ञ कुंड को पवित्र करें और यज्ञ पूरा हो जाए। इसके बाद ऋषियों की प्रार्थना है, इसका भाग कल पढ़ेंगे। ऋषि है उचो अन्विनितम ते भगवन विचेष्टितम यदात्मना चरसी ही कर्म ना जयसे विभूतये यता उपसे दुईश्वरीं न मन्याते स्वयं अनुवर्ततिं भवान। तो अब मंगलवार को इनका पुनः शुरू करेंगे ऋषियों की प्रार्थना से। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। ये कुछ टेक्निकल प्रार्थनाएं हैं, अब जो हैं उनको सुन लें, ऋषि क्या कह रहे हैं ये दो शब्द सुन लें, फिर आगे बढ़ते फिर कथा को विराम देते हैं। कोई आपकी अनुभूति है तो बता दीजिए आज की। ऋषि क्या कह रहे हैं, हे भगवान आपकी लीलाएं विचित्र हैं, क्योंकि स्वयं आप कर्मों को तो करते हैं किंतु उन सबों को सबों से आप निर्लेप बने रहते हैं। दूसरे लोग वैभव को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्मी के की शरणागति करते हैं, वे लक्ष्मी जी स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी आप उनकी बहुत अधिक सम्मान नहीं करते अपितु उनसे निष्प्रसी बने रहते हैं। ये ऋषि भगवान की वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका भावार्थ अगली बार पढ़ेंगे मंगलवार को। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, या आज की अनुभूति क्या है बताइए। हरे कृष्ण। हाँ जी,
ये जैसा आपने बताया विष्णु जी के ठाकुर के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी वाली मात्र कैनो इंडस्ट्री इंद्रियों से नहीं समझ सकते,
क्या कहते हैं क्या नहीं
साधना
तो ये दिव्य है। असल में वो इसीलिए कहते हैं ये साधना हम करते हैं भौतिक इंद्रियों से, परंतु इसका लक्ष्य है असली जो भाव है उसको प्रकट करना। इसलिए उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से पहले कुछ कार्य होते हैं, उसको भी यज्ञ में ही गिना जाता है, जबकि वो यज्ञ का काम नहीं है। जैसे यज्ञ के कुंड बनाना है या सफाई करनी है तो या झंडे पताका लगाने हैं, वो यज्ञ नहीं है, परंतु वो यज्ञ में गिने जाता है। ऐसे भौतिक इंद्रियों के द्वारा साधन आध्यात्मिक भगवान को नहीं समझ सकता है, परंतु उस साधन से आध्यात्मिक भगवान के भाव को प्रकट किया जा सकता है।
ठीक है, वो पॉइंट ले रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं।
हाँ जी,
जो इंद्र इंद्र वाला जो आता है उसके अंदर प्रभुपाद जी एंड में कह रहे हैं कि एवरीथिंग अबाउट द लॉर्ड हिज एक्टिविटीज पास्ट टाइम्स एंड अनकॉमन फीचर्स शुड बी एक्सेप्टेड एज इज and in this way even our present condition we can understand the Lord, matlab hum tatv se samajh sakte hain usko,
agar hum usko vastav mein jaise likha hai aise maan le, maine aapko kaha jo do baatein pehle maan le to phir jaan jayenge, to manna pehle hai, yahi vichitrata hai ki hum mante nahi, hum pehle janne ka prayas karte hain aur jana nahi ja sakta hai। जैसे लिखा है ऐसे मान लेंगे तो भगवान कृपा करके वैसे हमको दिखा देंगे।
तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डिवोटीज हैं या प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं वो भगवान की लीलाओं को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू नॉन डिवोटीज जो उसको नहीं लेते हैं, तो ये मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में
वैसे है। और श्रद्धा और विश्वास है तो ये सब कुछ अनुभूति हो सकती है, ये प्रभुपाद जी का कहना है। और श्रद्धा नहीं है तो ये सब झूठ है, तब क्या करोगे? तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग इसको मूर्ति करके देखते हैं और हम इसको साक्षात भगवान करके देखते हैं। जो ठाकुर जी मंदिर में खड़े हैं, जो उत्तम कोटि का पहला महाभाव भागवत है, वो उसको तो साक्षात भगवान मानता है, और नया भक्त है उसको अभी तक मूर्ति ही मानता है। तो ये उनके अपनी श्रद्धा के ऊपर है, और तीनों भक्तों का विभाजन भी श्रद्धा के ऊपर है। तो जिसकी श्रद्धा पक्की है भगवान के शब्दों के ऊपर, भगवान के गुण लीला रूप शास्त्र गुरु के शब्दों पे, उसके सामने भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे, उनको फिर कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वास नहीं है तो भगवान काय के लिए प्रकट हों?
एक चीज और समझनी है कि जैसे हम लोग शिक्षा अष्टकम में बोलते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तो भगवान के नाम में शक्ति पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए जब हम महामंत्र का उच्चारण कोई भी इनिशियल स्टेजेस में नियोफाइट करता है तो उसकी प्यूरिफिकेशन जल्दी हो जाती है।
ठीक है, भगवान की शक्ति सब नामों में भरी हुई है, वो शक्ति तो अपना पूर्ण काम करती है, परंतु हम हमारे ऊपर कितना मैल है उतना टाइम लगेगा। जितना मैल ज्यादा है उतना टाइम ज्यादा लगेगा, मैल कम है तो टाइम कम लगेगा। भगवान की शक्ति में उतनी की उतनी है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसका उदाहरण वो देते हैं कि आग में गीली लकड़ी डालो या सूखी डालो तो दोनों में अंतर होता है, तो अंतर आग के तेज में कोई अंतर कमी नहीं है, लकड़ी के गीलापन और सूखापन की वजह से जलेगी या नहीं जलेगी। तो भगवत नाम शक्तिशाली है, लेकिन हमारे अंदर भौतिक कितना प्रभाव है उतना ही कम प्रभाव है, तो आध्यात्मिक ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, भौतिक ज्यादा प्रभाव है तो आध्यात्मिक प्रभाव कम दिखेगा। हाँ जी
जी, आपने बोला था कि भगवान को आप उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान आपको चाहते हैं कि आप जाने, तो उसमें प्रभु जी अपना फिर मतलब फिर ये तो ऐसे हो गया कोई सोचेगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारा एफर्ट का फिर क्या हुआ, मतलब प्रोपोर्शनेट होता है एफर्ट।
पहले तो ये समझे कि उसी को भगवान उतना जानने का सामर्थ्य देंगे वो जो एफर्ट करेगा, बिना करने वाले को काय के लिए देंगे। जो भगवान को जानने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा है वो जितना जानने के योग्य होगा उतना ही भगवान जानने की अनुभूति दिलाएंगे, उसको देंगे। अपने आप नहीं, प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद। उसका अभ्यास भगवान को प्रकट करने का कारण नहीं है, भगवान की अपनी अनुग्रह से जितना उसकी योग्यता है उतना उनके सामने प्रकट होते। अभ्यास तो करना ही है, अपने आप नहीं होगा। हरे कृष्णा। चलो श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। पहले तो ये समझे कि उसी को भगवान उतना जानने का सामर्थ्य देंगे वो जो एफर्ट करेगा, बिना करने वाले को काय के लिए देंगे। जो भगवान को जानने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा है वो जितना जानने के योग्य होगा उतना ही भगवान जानने की अनुभूति दिलाएंगे, उसको देंगे। अपने आप नहीं, प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद। उसका अभ्यास भगवान को प्रकट करने का कारण नहीं है, भगवान की अपनी अनुग्रह से जितना उसकी योग्यता है उतना उनके सामने प्रकट होते। अभ्यास तो करना ही है, अपने आप नहीं होगा। हरे कृष्णा। चलो श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, गौरंगा गौरंगा गौरंगा।